ओम शांति। प्रभु मिलन के प्यारे प्यारे दिन आ गए हैं या आ रहे हैं? आ गए हैं। और बाबा जो अभी हम सबके बीच में 14 को आने वाले हैं, आप सभी भाई बहने जो पहले यहाँ पधारे हैं सेवा अर्थ, मैं उन सब के लिए 2 संकल्प देता हूँ। पहला तो अपनी तैयारी बहुत सुंदर कर लें, 5 दिन बाकी हैं, बहुत सुंदर तैयारी, ताकि बाबा के मिलन का अति सुंदर अनुभव प्राप्त हो। दूसरा, आप सभी पहले आए हैं तो शांति वन के वाइब्रेशंस को इतना पावरफुल बनाएं कि जो भाई बहने बाबा से मिलने आएंगे, नए आएंगे बहुत, उनको सुंदर अनुभव हो, निश्चय दृढ़ हो जाए और वे बाबा से अपना श्रेष्ठ भाग्य लेने के लिए सदा तैयार रहें। तो 2 काम आप सभी को करने हैं। ऐसा माहौल बना देना है कि जब सब लोग यहाँ आए, आप सब जानते हैं टीचर्स बहने बैठी हैं, संख्या कम मिलती है तो नयों को ही चांस देना पड़ता है, यहाँ आते ही उन्हें ऐसा लगे एक अलौकिक दुनिया में प्रवेश कर लिया है, यही वो जगह है, यही वो ज्ञान है, यही वो बाबा है जिससे हम मिलना चाहते थे, जो हमारा अपना है। बहुत महत्व की बात है हम सबके लिए भी और आने वालों के लिए भी कि बाबा हमारा है। ये बहुत गहरी फीलिंग हमें भी होती रहे और आने वालों को भी होने लगे, हमारा है वो, जिसको आज तक हम भगवान कहते थे, जिससे मिलने के लिए तरसते थे, जिसके आगमन की राहें तकते थे, वो हमारा है। तो जब बाबा आए तो ऐसा लगे वही है जो प्यार का सागर है, ये वही है जो हमारी जन्म जन्म की कामनाओं को पूर्ण करेगा, ये वही है जो हमारी जन्म जन्म की भक्ति का फल देने आया है। तो सभी भाई बहने तैयार हैं दोनों कामों के लिए? बोलो हाथ उठाकर, तैयार है ना? बहुत अच्छा। तो पहले मैं आप सभी के सामने एक बहुत सहज और अति सुंदर बात पुरुषार्थ की रखना चाहूंगा, और वो है हमारी श्रेष्ठ स्थिति का आधार श्रेष्ठ स्मृतियां। 2-3 दिन पहले भी आ गया है वरदान में, बाबा ने आकर हमें श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाई, याद दिलाया है हमें बहुत कुछ। जो कुछ उसने हमें याद दिलाया वो हमें याद आने लगे, वो हमें याद आ गया हो। देखो मैं थोड़े में बताऊं, मैं 2 दिन पहले ही इंग्लैंड से वापिस आया, वहां की हर चीज को मैंने देखा, देखा माना घूमने की दृष्टि से नहीं, मैं ज्यादा घूमने नहीं जाता हूँ, वहां के लोगों की मेंटलिटी, वहां की कल्चर मैं देखना चाहता था, जिन्होंने विश्व के 2/3 हिस्से पर राज किया वो कैसे हैं। मुझे मौका मिला उनके महल को देखने का भी बिल्कुल अंदर से, पर विशेष बात उनकी पार्लियामेंट को देखने का ऐसा ही मौका मिला कि वहां का एक लॉर्ड जिसकी बहनों से पहचान थी, उन्होंने उस बहनों ने उनको फोन किया कि ऐसे ऐसे हैं, हम देखना चाहते हैं, उसने कहा आओ। और ये एक वंडरफुल बात थी कि वही हमें घुमाने ले चला, बुजुर्ग व्यक्ति लॉर्ड। मैंने उससे पूछा यूके में लॉर्ड का चुनाव कैसे होता है, आप कैसे चुने गए, बहुत होमली हम उससे हो गए। आपको मालूम है जब भारत में अंग्रेजों का राज था तो कोई भी वायसराय आता था उसके नाम से पहले लॉर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलोजी ये लिखा रहता था। तो मैंने इनसे पूछा आप कैसे इलेक्ट हुए एज ए लॉर्ड, तो कहा हमारे यूके में ऐसी ही लॉ था कि जिस व्यक्ति को एक बार लॉर्ड चुन लिया जाएगा वो पूरा जीवन लॉर्ड रहेगा, फिर उसके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे लॉर्ड बनते रहेंगे। तीन तीन जो प्रधानमंत्री हुए उनसे पहले एक प्रधानमंत्री ने इस कानून को बदलवा दिया और कहा एक बार जो लॉर्ड चुना जाएगा वो पूरा जीवन लॉर्ड रहेगा लेकिन उसकी संतान लॉर्ड नहीं होंगी। तो एक ये गहरी बात जानने को मिली हमें, पता चला। हमने उनसे पूछा रानी का, प्रधानमंत्री का और आप सब का रिलेशन कैसा होता है, तो समझ में आया जैसे यहाँ राजा होते थे रानी का ठाट बाट वैसे ही है, और प्रधानमंत्री या चुने हुए लोगों को वो वैसे ही समझते हैं जैसे उनके सेवक पहले होते थे। तो बहुत चीजें अच्छी जानने को भी मिली। और ये देखा, एक थोड़ी सी बात बताकर मैं आगे चलता हूँ आज की क्लास पर। मैंने वहां की बहुत सारी चीजें देखकर ये महसूस किया कि इन लोगों की प्रारब्ध पूरी हो गई, अब समय भारत का है। ये कई चीजों से वहां समझ में आ गया, विशेष रूप से वहां की युवा शक्ति बहुत पीछे जा रही है और हमारी युवा शक्ति बहुत आगे जा रही है। भले ही कलयुग का अंत है, विकृति बहुत हैं, व्यसन भी बहुत हैं, लेकिन हमारे यहाँ युवकों में एजुकेशन के प्रति जिस तरह का क्रेज है और कंपटीशन है वो वहां नहीं है। इसलिए अगर भारत के वैज्ञानिकों को, इंजीनियरों को, आईटी वालों को वहां से हटा दिया जाए तो ये बहुत सारे देश डेड हो जाएंगे। तो अब समय आ गया है भारत का। कोहनूर हीरा भी हमने देखा और मैंने इस कोहनूर हीरे को बहुत सारी चीजें जानकर नाम दिया है, ये अनलक्की हीरा है। आप कहेंगे कोहनूर हीरा इतना बड़ा प्रसिद्ध चीज, बहुत बड़ा था उसको छोटा बना के ताज में डाला गया था एक इंच का। इसका अगर आप इतिहास जाने तो जिस राजा के पास ये गया उसका सर्वस्व समाप्त किया। अंग्रेजों के पास पहुंचा तो उनका लंबा चौड़ा साम्राज्य नष्ट होने लगा। भारत वाले उसको वापिस मांग रहे थे, मेरा शुभ संकल्प है कि उसको वापिस न लिया जाए। वो अनलक्की हीरा है, हम सब हीरे हैं यहाँ, हमें किसी हीरे की जरूरत नहीं। बाबा सबसे बड़ा हीरा, बाबा सबसे बड़ा हीरा सबको हीरा और हीरो बनाने के लिए आ गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये देश संपन्न है, स्वच्छता बहुत है, सुंदरता भी भारत से ज्यादा है, सड़कें भी अच्छी हैं। मैंने जब किसी को कहा वहां के लोगों को कि आपके देश में बहुत सफाई है, हमारे देश में गंदगी रहती है, तो उसने तुरंत उत्तर दिया हमारे देश में बाहरी सफाई है, सबके मन गंदे हैं, भारत में बाहर से गंदगी है, मन साफ हैं। बड़े गर्व की बात है, बाबा की सेवाएं भी बहुत सुंदर हो रही हैं, लेकिन सब कुछ देखकर, बाहरी सौंदर्य देखकर मुझे समझ में आता था कि भारत जैसा महान कोई भी देश न है न कभी होगा, ये सत्य है। रानी का जो महल हमने देखा, एक बात और सुना दूं आपको, नशा तो हो ही जाएगा। उस महल में बहुत सौंदर्य तो था लेकिन जब उनका डाइनिंग हॉल देखा जो बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर, काफी बड़ा भी था, 35-40 बाई 50 का होगा, लेकिन उसमें सभी चीजें कांच की रखी हुई थी, सजी सजाई सुंदर। मैं सोच रहा था हमारे देश में कलयुग के अभी 100-200 साल पहले के राजाओं के भी डाइनिंग हॉल में सब वस्तुएं सोने और चांदी की ही हुआ करती थी। भारत इतना संपन्न देश था, तो हम सभी भारत को फिर से संपन्न महान बनाने में लगे हैं। और आज की मुरली बाबा ऑपरेशन करने आया है, ऑपरेशन चालू हो गया है। पता है आपको, ऑपरेशन चालू हो गया है। प्रकृति का भी ऑपरेशन कर देगा, सारी सृष्टि का ऑपरेशन हो जाएगा, कोई समस्या भी नहीं रहेगी। तो संसार एक क्रिटिकल पीरियड की ओर बढ़ता जा रहा है। मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि 2020 तक खेल बहुत बदल जाएगा। मैं विनाश की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये संसार विनाश के साथ साथ धर्मराजपुरी भी बनेगा। वहां मेरे से लोग प्रश्न पूछते थे कि बाबा ने कहा है इन देशों का विनाश एटम बम्स के द्वारा फट से हो जाएगा, तो क्या एक सेकंड में, 5-7 सेकंड में सबके विक्रम विनाश हो जाएंगे? नहीं, एटम बम छूटने से पहले वहां के मनुष्यों को काफी कष्टों से गुजरना पड़ेगा, जिनमें उनके विकर्म नष्ट होंगे। मुख्य बात जो संसार में बहुत बढ़ती जा रही है और वहां तो जिसका प्रकोप होता जा रहा है, वो है मानसिक रोग। और मानसिक रोगों की संसार में कोई दवाई नहीं होती, क्योंकि रोग मन में है, दवाई ब्रेन को दी जाती है, उससे मन के रोग ठीक नहीं होते। इसलिए आप सभी को मैं दो चीजें याद दिलाऊंगा, अपने मन को बहुत हल्का और प्रसन्न रखें सभी, ताकि मन में न टेंशन हो, न जरा भी डिप्रेशन का स्वरूप आए। मैं आप सभी को सावधान करना चाहता हूं एक चीज के बारे में, जो बाबा के शब्द हैं कि अंत में बाबा के बच्चों की भी दो लाइन होंगी, एक प्राप्ति करने वालों की, दूसरी पश्चाताप करने वालों की। जो पश्चाताप करेंगे उनको एक सूक्ष्म डिप्रेशन हो जाएगा, इसको मैंने नाम दिया है स्पिरिचुअल डिप्रेशन। हम सब इससे बचेंगे, इसलिए सभी यहां आकर शांत स्थान है, आप अपनी सांसारिकता से मुक्त हैं, गहन चिंतन करेंगे संगम युग पर, जो कुछ मुझे करना चाहिए क्या मैं वो कर रही हूं, कर रहा हूं, जो हम कर सकते हैं क्या वो हम कर रहे हैं, जो नहीं किया जा सकता उसे छोड़ दो। हर एक व्यक्ति अच्छे से अच्छा जो कुछ कर सकता है वो अवश्य कर लेना चाहिए। और इसके साथ साथ हर एक को एक संकल्प रख लेना है अपने मन में। हम इस पे वहां काफी कुछ क्लासेज कराते थे, आई कैन चेंज माई सेल्फ, मैं स्वयं को बदल सकती हूँ, मेरे अंदर स्वयं को बदलने की संपूर्ण शक्ति है। तो जो परिवर्तन हम अपने में लाना चाहते हैं उसको लाने का दृढ़ संकल्प इस महान तीर्थ पर करेंगे सभी, ताकि जीवन निष्कंटक हो, हमारी स्पिरिचुअल राहें निर्विघ्न हो, हम जो कुछ करना चाहते हैं वो कर सकें। और सभी को ये मालूम रहे कि हमारी श्रेष्ठ स्थिति, हमारी श्रेष्ठ स्मृतियां वातावरण को बदल देती हैं, परिवार को बदल देती हैं, परिवार के माहौल को बदल देती हैं। इसलिए अपने परिवारों की समस्याओं से प्रभावित न होकर उन्हें प्रभावित करने का दृढ़ संकल्प करें। समस्याओं का प्रभाव आपके ऊपर आता है, बड़ा नेचुरल है, लेकिन हमारी श्रेष्ठ स्थिति का प्रभाव समस्याओं को नष्ट कर सकता है, इसके अनुभव प्राप्त करें। मैं दो बातें आपको कहने वाला था, एक हुई हल्का रखना, बहुत खुश रहना। कहना तो सहज है खुश रहना, पर हम सब जानते हैं खुश रहना सबसे कठिन होता जाता है दुनिया में। एक दूसरे का व्यवहार ही मनुष्य को खुशी से दूर ले जाता है, खुशी महंगी हो जाती है, जीवन में आने वाली छोटी छोटी बातें, निराशा की बातें मनुष्य की खुशी को नष्ट करती हैं। लेकिन हमें अपने ज्ञान के बल से खुश रहने की कला सीखनी है। बहुत सारे पुराने भाई बहने बैठे हैं, मैं एक संकल्प देता हूं आप सबको, बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, ध्यान से सुन लेंगे, इस ज्ञान को अपनी डिवाइन विजडम बना दें, इस ज्ञान को अपनी दिव्य विवेक बना दें। विचार करेंगे इस पर, ज्ञान सबको मिल गया है, लेकिन किसी किसी ने इसको सुंदर विवेक बना दिया है, सद्विवेक बना दिया है। हमें इसको बना देना है दिव्य विवेक, जो हमारे जीवन को दिव्यता से भरेगा, जो हमारी खुशी को हमारी शक्ति बना देगा, जो हमारी शांति को हमारी बहुत बड़ी पावर में बदल देगा। सभी इस पे विचार करेंगे, ज्ञान को विवेक बना देंगे। दूसरी बात, ये दूसरी बात उनके लिए है, इस सभा में ऐसी जो महानात्माएं बैठी हैं, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं और जिन्हें अपनी नहीं संसार को कुछ देने की श्रेष्ठ इच्छा है, अपनी चिंताएं केवल नहीं, क्योंकि संसार को इस समय और आने वाले समय में अगले 5 सालों में हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की बहुत जरूरत है और होगी। उसके बिना मनुष्यों को सुखी जीवन जीना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी भाई बहने यहाँ बैठे हैं, वो अपने को चारों ओर से थोड़ा मुक्त करके सर्व खजानों से स्वयं को भरपूर करें। देने का समय समीप है। मुझे बाबा की कुछ बातें याद आ रही थी जो बहुत दिन से मुरलियों में नहीं आ रही हैं, मैं याद दिला दूं आपको। समय तुम्हारी इंतजार कर रहा है। बात करें अपने से, समय किसी की इंतजार नहीं करता। इंग्लिश में तो कहावत ही है, टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। समय और तूफान किसी का इंतजार नहीं करते, पर कौन है वो महान आत्माएं समय जिनके लिए रुका है। बाबा के सुंदर शब्द होते थे, समय बार बार रुक कर पीछे मुड़कर देखता है, मेरे मालिक आ रहे हैं या बहुत पीछे रह गए हैं। विचार करने की बात है, समय उस मोड पर आ गया है जहां अचानक कुछ भी घटित होगा दुनिया में और हमारे पुरुषार्थ की अंतिम लाइन भी समाप्त हो जाएगी। फिर हमें वो सब देखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जिसको हम देखना नहीं चाहते। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषार्थियों को अपने को तैयार करना है देने के लिए। निकाल दें अपने को छोटी छोटी बातों से। मैं एक घटना सुनाकर आपको एक सुंदर बात कहना चाहता हूँ। एक माता मेरे पास आई विदेश में ही, 2 बच्चे, दोनों बड़े, दोनों बचपन से ज्ञान में, एक ने PhD कर ली, दूसरा भी अच्छी एजुकेशन लेके अच्छी नौकरी में है। एक की इच्छा है मैं शादी करूं, दूसरा जिसने PhD की थी उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ। मैंने माँ से पूछा, वो बीच में बैठी थी दोनों साइड में, मैंने पूछा क्या समस्या है। देखो सुने आप ध्यान से, उसने कहा ये दोनों मेरे लड़के बचपन से ही शत्रु हैं। मैंने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराते हैं या नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सुन रहा था उनकी बात, कहा ये लड़का कहता है मैं शादी करूंगा, बचपन से ज्ञान में था। अभी वो जो दूसरा था पीएचडी वाला, वो बोल उठा, वहां सदा मेरी कंप्लेंट करती रहती है, मुझे कुछ नहीं करने देती है, कहती है जैसे मैं कहूं वैसे ही तुम्हें करना है। तीनों के बीच में खींचातान थी। सच्ची घटना है। मैंने उस माता जी को समझाया, मैं इन दोनों से तो अलग से बात करूंगा, अब मैं आपसे बात करता हूं, आप इनको फ्री करो, खुद भी फ्री हो जाओ। यही बात मैं आप सबको कहना चाहता हूं, खुद भी फ्री हो जाओ, दूसरों को भी फ्री कर दो। जीवन श्रेष्ठ भाग्य से चमकाना है, ये सुंदर मौका फिर नहीं मिलेगा। मैं जब समर्पित हुआ तब भी सोचता था, और उसके बाद ये बात अपने को याद दिलाता आया, मैं अपने को मोटिवेट करता था, बार बार अपने को याद दिलाया करता था, ये दिन याद आया करेंगे, ये दिन याद आया करेंगे। भक्ति में भी हमारे सामने जो कुछ अब घटने जा रहा है संगम युग के अगले सालों में, उसके ही आधार पर 18 पुराण लिखे जाएंगे, तब भी लोग याद करेंगे द्वापुर से, और हम बाबा के बच्चे उन चीजों को याद करेंगे, कैसे भगवान इस धरा पर आया था, उसने हम सब की पालना की थी, सम्मुख बैठकर ज्ञान सागर ने संपूर्ण सत्य रहस्य खोले थे, सभी आत्माओं को प्यार देकर पावन बनाया था, विकारों की अग्नि को शीतल किया था, ये दिन हमें भी याद आया करेंगे। मैं वहां था, मुझे एक बात बहुत याद आती थी। मैंने पूछा, बहुत सारे पुराने विदेशी भाई बहने जो अंग्रेज जिन्हें हम कहते हैं क्रिश्चियन बैकग्राउंड से जो हैं, वो दिखते नहीं थे, ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे वो पुराने भाई बहने दिखते नहीं हैं। मैंने पूछा वो कहाँ चले गए, कि सब विदाई ले गए। मैं सोचा यही वो विदेशी भाई बहने हैं थे जिनके लिए बाबा 12-12 घंटे 16-16 घंटे ओम शांति भवन में बैठा, उनकी पालना की, प्यार दिया। दादी को भी कष्ट तो होता होगा ना जिनके तन में वो बैठा है, उनके कष्टों को भी बाबा ने ठीक किया, सहन करने की उन्हें शक्ति दी, और जिन आत्माओं की रात रात भर बैठकर पालना की, वो कैसे उसे छोड़कर चले गए। तब हमें भी लगता था बाबा इनको कितना टाइम दे रहा है। सोचें, प्रभु पालना मिल रही है, उस पालना का हमें रिटर्न देना है। अब बाबा भी तो अपने इस महान कार्य को क्लोजअप करना चाहता है ना, लंबा काल उसने पालना की है, 80 साल पूरे हो जाएंगे कुछ दिनों में, हम सभी स्मृति स्वरूप हो जाएं। मैं आपको अब याद दिलाऊं, बाबा ने आकर हम सभी को स्मृतियां दिलाई हैं, याद दिलाया है तुम कौन हो। इसलिए रोज सवेरे हम अपने को स्मृतियां दिलाया करें। यहां शांति वन में अब से कम 8-10 दिन आप सदा यहां हैं, 8-10 दिन तक रहेंगे। रोज सवेरे उठकर अपने को स्मृतियां दिलाएंगे, और उसकी मैं एक विधि बता रहा हूं। हम एक प्रैक्टिकल क्लास लेना चाहता हूं 25 मिनट। सवेरे उठें, उठते ही पहले बाबा को गुड मॉर्निंग करेंगे, बाबा को अपने सामने देखकर, बाप दादा को, दोनों को, और फिर दूसरा संकल्प करेंगे, प्यारे बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। लेकिन सच्चे दिल से, ऐसे नहीं अंदर लगे कुछ मिला तो नहीं, सब कुछ दिया, श्रेष्ठ बुद्धि दी है, श्रेष्ठ भाग्य दिया है, स्वर्ग की राजाई लेकर आए हैं, अपना प्यार दिया है, सदा कहना सुंदर परिवार दिया है, सब कुछ सुंदर, धन संपदा खाना पीना सब सुंदर दिया है। ये कंप्लेंट बिल्कुल छोड़ दें कि ये नहीं दिया वो नहीं दिया, या पड़ोसी को ज्यादा दिया मुझे कम दिया, या बड़े भाई को ज्यादा दिया मुझे कम दिया, ये सब नहीं। तुमने मुझे सब कुछ दिया। इसके बाद अपने को वो स्मृति दिलाएंगे जो बाबा ने हमें रोज दिलाई है, और उसको इस स्वरूप से भी आप दिला सकते हैं कि बाप दादा हमारे सामने खड़े हैं, या एक सुंदर सीन बना देना कि यहाँ स्टेज पर बाप दादा आए हैं दादी के तन में। वो सीन आप सभी ने देखा है, किसी ने यहाँ देखा है, किसी ने टीवी पर देखा है। बाप दादा यहाँ आए हैं, मैं उनके सम्मुख हूँ, और बाबा कह रहे हैं बच्चे अब अपने को याद दिलाना, तुम इस संसार की सबसे अधिक भाग्यवान आत्मा हो, लेते जाना इसको अपने अंदर में, समाते चलना, तुम्हारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, मैं तुम्हारी पालना करने आ गया हूँ, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, बहुत महान हो, तुम इस धरा के श्रृंगार हो, तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। याद दिलाना, बाबा सामने बैठा है और हमें याद दिला रहा है, मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं, तुम शिव शक्ति हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। बाबा को सामने देखकर उसकी आवाज सुनना, जागृति आ जाएगी, बिल्कुल चेतन हो जाएंगे। लेकिन ध्यान देंगे ये काम यहाँ आने से पहले ही कर लेना है, आंख खुली और ये सब चालू कर देना। कई लोग क्या सोचते हैं, नहा धो के तैयार हो जाएं, हॉल में चलकर योग करेंगे, तब तक मन काफी एक्टिव हो जाता है, किसी के मन में व्यर्थ चलने लगता है, किसी के कल याद आने लगता है, किसी को घर याद आने लगता है। मैं हमेशा एक बात सबको याद दिलाता हूँ, उठते ही पहले 10 मिनट हमारे लिए सबसे सुंदर समय होता है, इसमें हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, भाग्य को पलटा सकते हैं, बुद्धि को महान बना सकते हैं, दिव्यता से भर सकते हैं। इसलिए वो 10 मिनट बिताने नहीं है नहाने धोने में, नहाना धोना भी हो, तैयार होना हो, तो भी उन संकल्पों को करते हुए होना है। इस तरह रोज सवेरे पहले 10 मिनट स्वयं को चार्ज करेंगे, मैं इसे कहता हूँ चार्ज करना। और जब आप यहाँ आकर बैठे हैं तो 5 स्वरूपों का अभ्यास करें, जिनको नहीं आता बहने सिखा देंगी यहाँ, 5 स्वरूपों का अभ्यास। हमें स्मृति स्वरूप बना देता है, और मैं थोड़े में आपको कह दूं, मैं आत्मा हूं पहली स्मृति, स्वयं को चाहे यहां देखें बहुत तेजस्वी आत्मा, चाहे सामने देखें अपने को, ये मैं हूं। आत्माभिमानी होने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस की जा सकती है, मैं आत्मा शांत हूं। इसको रटेंगे नहीं, इसको रिपीट नहीं करेंगे, स्वीकार करेंगे, मैं शांत हूँ। 3 बार कर दो, मैं शांत हूँ, मेरे पास गहन शांति है, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मेरे पास प्यार भरपूर है, मुझे परमात्म प्यार मिला है, मैं सबको प्यार बांट सकता हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, सुख स्वरूप हूँ। मैं इन शब्दों को चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये कहने की आदत पड़ गई है सब ब्राह्मणों को और कोई इफेक्ट नहीं होता, मैं बहुत सुखी हूँ। स्वीकार करें, मैं बहुत सुखी हूँ बाबा, आपने मुझे बहुत सुख दिया, मैं बहुत सुखी हूँ, आपको पाकर हमारे जन्म जन्म के दुख मिट गए, मैं बहुत सुखी हूँ। देखना अनुभव, मेरे पास संपूर्ण पवित्रता है, आपने मेरी सोई हुई पवित्रता को जगा दिया है, मैं परम पवित्र हूँ, मेरे पास पवित्रता का बल है। संकल्प क्रिएट करेंगे, सभी सीख लें, जितने सुंदर संकल्प रचेंगे उतना ही ज्यादा आनंद होगा। बिना संकल्पों के योग करने से शक्ति मिल सकती है, पर किसी को नींद भी आ जाती है और किसी का मन व्यर्थ में भटक जाता है। इसलिए सभी ये याद करें, हमारे मन में जो संकल्प रचने की शक्ति है, क्रिएटिव एनर्जी है हमारे मन में, इसको यूज करें। तो सवेरे सुंदर संकल्पों की रचना करेंगे और यही संकल्प सारा दिन हमारे जीवन पर अमिट छाप छोड़े रखेंगे। बहुतों को सुंदर संकल्प करने आते नहीं हैं, सीखने हैं। केवल बाबा के बच्चे ही श्रेष्ठ संकल्प जानते हैं, उन्हें क्रिएट कर सकते हैं, उसका फायदा उठाएंगे। नहीं तो सभी की शिकायत होती है, हमारे पास मनन शक्ति नहीं है, और मनन शक्ति उनके पास नहीं होती जिनका मनन व्यर्थ में ज्यादा चलता है। देखो, मन के अंदर मनन शक्ति तो है ही, मन माना ही जिसमें मनन शक्ति है, उसे हम व्यर्थ में चला दें या पॉजिटिव समर्थ ज्ञान में चला दें। सुंदर संकल्पों की रचना के साथ सवेरे योग का अच्छा आनंद लेंगे, पांच स्वरूपों का अभ्यास भी, परमधाम में बाबा के पास जाकर बैठना भी, वापिस इस देह में अवतरित होने का अनुभव, सूक्ष्म लोक में बाप दादा से मिलन का अनुभव, ये बहुत सुंदर भिन्न भिन्न तरह की ड्रिल के द्वारा सवेरे के समय को सफल करेंगे। सारा दिन मैं पांच दिन के लिए, 10, 11, 12, 13, 14 पांच दिन है, पांच दिन के लिए आपको पांच सुंदर संकल्प दे देता हूं, और कर्म करते हुए सेवा में रहते हुए आप उनको याद करते रहना। कल के लिए जो सबका जाना पहचाना संकल्प है, मैं एक महान आत्मा हूं, सवेरे इसको गुड फीलिंग में ले आना। जैसे बाबा सामने खड़े होकर मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे कह रहे हैं, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, बहुत महान हो, मैं महान हूं। सवेरे एक बार अच्छी तरह ये हमारे अंतर मन में समा जाए, और फिर दिन में इसको याद करते रहना और लक्ष्य रखना, हर घंटे में 3 बार अवश्य इसको याद कर लेना है। आप इससे पाएंगे मन व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहेगा। सबको ये गुह्य बात जाननी चाहिए, जो संकल्प हम बार बार करते हैं उससे जो एनर्जी क्रिएट होती है वो आत्मा से हमारे ब्रेन को जाती रहती है, वो सारे देह में भी फैलती रहती है। इसलिए सवेरे से अगर बहुत अच्छी तरह याद कर लें तो सारा दिन वो प्योर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी हमारे मस्तिष्क में जाती रहेगी। माताएं भी समझ लें ध्यान से, मैं कल के लिए एक बहुत सहज बात आपको कह रहा हूँ। 4 बजे से 3:30, 4 जब भी आप उठें, और 8 बजे तक योग में मुरली सुनते और बीच के खाली समय में आप 25 बार याद कर जाना, मैं एक महान आत्मा हूँ। 5 बार यहाँ आने से पहले, पांच बार योग में, दस बार बीच के दो घंटों में पांच से सात, और पांच बार मुरली के समय आप पाएंगे आपके ब्रेन को बहुत प्योर एनर्जी चली गई है, मुरली का आनंद आएगा, मुरली बहुत बड़ा सुख देगी, और सारा दिन उसका अभ्यास करने से एक गहरी छाप मन पर उसकी पड़ जाएगी, हमारे अंदर छुपी हुई महानताएं जागृत हो जाएंगी, हमें पुरुषार्थ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, संस्कार महान हो जाएंगे, विचार महान हो जाएंगे। दूसरा संकल्प परसों के लिए, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। गुड फीलिंग के साथ ये संकल्प करेंगे, पानी पीते हुए भी दो बार, चाय पीते हुए पांच बार, भोजन खाते हुए पांच बार, मुरली सुनते हुए दस बार, सवेरे 25 बार निश्चित कर लें। अपना अपना प्लान बना लेना, यहीं से आपको आ जाएगा पुरुषार्थ की श्रेष्ठ प्लानिंग कैसे करें। तीसरा दिन, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। साथ में संकल्प जोड़ देना, परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं। चौथा दिन, मैं इस देह में अवतरित आत्मा हूँ, और मैं वही हूँ जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, इष्ट देव देवी। और पांचवा बाबा का दिन, आंख खुलते ही ध्यान से सुन लेंगे, क्योंकि पांच दिन है उस दिन भूले नहीं आप, इस बीच में आप बहुत कुछ सुनेंगे। उठते ही मन डांस करने लगे, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, क्योंकि आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। और फिर ऊपर को देखेंगे, ज्ञान सूर्य सारे संसार पर अपनी किरणें डाल रहे हैं, और फिर वो धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं मुझसे मिलने, और आ गए आंखों के सामने, उनकी किरणें सामने से मुझ पर पड़ने लगी। सवेरे के समय कई बार ये अभ्यास कर लेना, कम से कम 10 बार, और दिन में इसको याद रखेंगे, मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूँ, आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। फिर वही बात रिपीट कर देता हूँ, इन सुंदर संकल्पों से मन व्यर्थ और साधारण संकल्पों से मुक्त रहेगा, और ब्रेन को विशेष एनर्जी जाती रहेगी, और मन में मनन शक्ति का विकास होगा। पांचों दिन के ये पांच संकल्प हैं, पसंद हैं? करेंगे सभी? धुन लगा दें, समझ लें ये पांच दिन हमारे लिए वरदानी दिवस हैं। इन पांच दिनों में हमें सुंदर अनुभव करने हैं, और ये अनुभव पूरा जीवन हमें काम आएंगे। आप पुरुषार्थ की एक रूपरेखा समझ सकेंगे, और शाम के समय भी सब कोशिश करेंगे, जो भी अपनी सेवाओं से फ्री हों, योग में आकर बैठें और यही सब अभ्यास करें। बहुत बिजी भी हों, आधा घंटा तो शाम के समय भी योग अभ्यास करना है, क्योंकि जब भाई बहन सेवाओं में आते हैं तो सेवाओं में आके रिमझिम भी रहती है, ब्राह्मण परिवार मिलता है, खुशी भी होती है, आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, वो सब ठीक है, उसकी कोई मनाही नहीं है, सुंदर परिवार मिला है, जन्म जन्म की महान आत्माओं का मेला हुआ है, तो रिमझिम भी रखनी चाहिए, लेकिन उस में बाह्य मुक्ता ना आ जाए। सब इस रहस्य को भी याद रखेंगे, खुशी यदि बाह्य मुखी हो जाए तो खुशी वहीं नष्ट हो जाती है। खुशी आत्मा को सूक्ष्म शक्ति प्रदान नहीं करती, खुशी जन्म जन्म के गमों को दूर नहीं करती। यदि हम खुशी को अंतर्मुखता के साथ अंदर में समा लें तो ये खुशी हमारे अंदर स्थायी रूप से समा जाएगी और जन्म जन्म के कष्टों को समाप्त करेगी। तो सेवाओं में रहते हुए भी सभी भाई बहने इन चीजों पर ध्यान देंगे। साथ ही साथ जो जितना अच्छा अंतर्मुखी रह सके, मौन रह सके। वैसे तो बहनें प्रोग्राम अवश्य बनाएंगी, मुझे याद है जब पंजाब का टर्न होता है तो बहनें अच्छा मौन करा देती हैं, वही फिर से कराएंगी। मुझे याद है जब दीदी मनमोहिनी थी हमारे यज्ञ में हर सोमवार और गुरुवार को मौन चलता था, बहनें बैठी हैं याद हैं। वो दिन बहुत सुंदर होते थे साधनाओं के। दादी कुमार का भी बाबा के आने से दो दिन पहले से भट्टी और मौन का प्रोग्राम बना देती थी। आप सब यहाँ बनाएंगी ही बहने, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर स्वयं को बहुत अधिक अंतर्मुखी रखना, क्योंकि बोलने से भी हमारी बहुत शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है उसकी मनन शक्ति भी क्षीण होती रहती है। जिसको एकाग्रता की शक्ति बढ़ानी है उसको भी अंतर्मुखी होना ही चाहिए, मौन रखना ही चाहिए। और जो बहुत ऐसी सेवाओं में हैं जहां बोलना ही पड़ेगा तो वो लक्ष्य रख लें सवेरे 8 बजे तक और ऐसे ही शाम को 6 से 10, बहुत अंतर्मुखता रख लें। मैं ये नहीं कहूंगा आप बिल्कुल न बोलें, लेकिन अंतर्मुखी हो जाएं। अंतर्मुखता का यहाँ अर्थ है अपने विचारों को बाहर से समेटकर अंदर ले जाएं, अपनी इच्छाओं को बाहर से समेटकर अंदर ले जाएं, अपनी कर्मेंद्रियों के रसों को जो मनुष्य को बाहर की ओर ले जाती है उसको अंतर्मुखी कर दें गहरे चिंतन में। इस चिंतन में कि भगवान आया है तो मुझे उससे अधिक से अधिक ले लेना है ताकि किसी भी जन्म में कोई कमी ना हो। बस मैं आपको इतना कहूंगा, 3 मिनट और। अपने को इतना संतुष्ट कर देना है ताकि वो संतुष्टता द्वापर युग के बाद भी चलती रहे। इतनी गहन शांति का अनुभव कर लें ताकि द्वापर से शांति की तलाश न रहे। अपने चित्त को खुशी से इतना भर दें कि द्वापर के बाद भी हम संसार को खुशी बांटते रहें। अपने विवेक को इतना दिव्य बना दें, अपनी बुद्धि को सद्विवेक से इतना भर लें कि द्वापर से भी हमारे पास श्रेष्ठ बुद्धि रहे। इतना अपने को संतुष्ट और सरल चित्त कर लें। मैं आपको याद दिलाऊं, जीवन के सुखों के लिए, परिवारों में खुशहाली के लिए, पुरुषार्थ की तीव्रता के लिए, समस्याओं को सहज पार करने के लिए सरल चित्त होना परम आवश्यक है। हल्के होना, सरल चित्त होना, हर बात को सहज भाव से लेना। देखो आपको यहाँ संगठन में सरलता की परीक्षा होती है। भोजन पे क्यू लगी हुई है, आपको भूख लगी है, फिर भी आपको सहज भाव से रहना पड़ेगा। सहज भाव को बढ़ाते चलना, ये सरलता योग को सरल करेगी, जीवन को सरल करेगी। और याद रखेंगे, लास्ट लाइन बोलना चाहता हूँ, अब इस सृष्टि पर वो नहीं होगा जो हम चाहते हैं, अब वो होगा जो प्रभु प्लानिंग है। इसलिए अपने को साक्षी भाव में स्थित करते चलें। मेरी भी शुभ भावना है, आप भी अपने लिए शुभकामना रख लें। मधुबन के इन दिनों का पूर्ण रूप से आनंद लेकर घर वापिस जाना है और इस अनुभव को, इस स्थिति को सदा के लिए कायम रखेंगे। ओम शांति।
कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी।